एक महीने बाद आस्तिक और अरुणिमा इस समय अपने कमरे में अपने बेड पर थे। आस्तिक पूरी तरह से अरुणिमा में खोया हुआ था। अरुणिमा का चेहरा इस समय दर्द से भरा हुआ था, पर आस्तिक शायद इस समय अपने मॉन्स्टर रूप में था, क्योंकि अरुणिमा बहुत देर से आस्तिक से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकती है, पर आस्तिक आंखें बंद किए हुए सिर्फ अपने सुकून में खोया हुआ था। लेकिन जब अरुणिमा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने आस्तिक को खुद के ऊपर से हटाने की कोशिश की, और आस्तिक ने अरुणिमा को अपनी लाल आंखों से देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा ना कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत हो तो मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इतना कहकर आस्तिक अरुणिमा के होठों को चूमने लगा। करीब एक घंटे बाद आस्तिक पूरी तरह से निढाल होकर अरुणिमा के बगल में लेट जाता है। कमरे का एसी फुल ऑन था, लेकिन फिर भी दोनों की सांसें तेज चल रही थीं और वो दोनों पूरे पसीने में भीगे हुए थे। आस्तिक धीरे से अरुणिमा के बालों को सहलाता है और मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहता है, तुम्हारी परफॉर्मेंस दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। अरुणिमा बस हैरान नज़रों से आस्तिक को देख रही थी। आस्तिक मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ पर टिककर अरुणिमा को देखकर कहता है, पता है अरुणिमा, जब भी तुम्हारे पास आता हूँ ना तो मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ, और मैंने तुम्हें पहले भी बोला है ना, जब मैं मूड में हूँ तो बातें मत किया करो। अरुणिमा हल्के गुस्से में आस्तिक को घूरती और कहती है, आपको पता है आप मुझे कितना थका देते हैं। आस्तिक हंसते हुए अरुणिमा को देखता और कहता है, वैसे इस थकान के बाद तुम और ज़्यादा हसीन लगती हो। अरुणिमा का चेहरा हल्का लाल हो जाता है और वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। आस्तिक बेड पर सीधा लेटते हुए कहता है, गोली लेना मत भूलना। अरुणिमा हैरानी से एक नज़र आस्तिक को देखती है। पिछले एक महीने से ऐसा ही होता आया है। जब से प्रणाली की शादी हुई है, आस्तिक और अरुणिमा के बीच में सब कुछ ठीक है। ना आस्तिक अरुणिमा से ऊंची आवाज़ में बात करता है और ना ही उसे टॉर्चर करता है, बल्कि वो लोग एक साथ एक नॉर्मल कपल की तरह रहते हैं, या फिर ऐसा कहें कि रहने की कोशिश करते हैं। उनकी हर रात एक बिस्तर पर एक दूसरे को प्यार करते हुए बीतती है, और हर सुबह एक दूसरे के साथ नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह बातें करते हुए। लेकिन इस बीच आस्तिक ने अरुणिमा को बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना हर बार याद दिलाया, क्योंकि वो इस वक्त कोई बच्चा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। थोड़ी देर बाद अरुणिमा देखती है कि आस्तिक सो चुका है। वो जल्दी से अपनी जगह से उठती है और खुद को एक पतले से चद्दर में ढकते हुए अलमारी के पास जाती है। वो अलमारी को खोलती है और ड्रॉज में से एक बर्थ कंट्रोल पिल्स निकालती है। जब आस्तिक ने अरुणिमा को ये दवाई ला कर दी तो अरुणिमा ने इस बात पर ना ही आस्तिक से कोई सवाल किया और ना ही ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि आस्तिक को इस वक्त बच्चा नहीं चाहिए था और अरुणिमा खुद अभी किसी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए खुद को काबिल नहीं मान रही थी। वैसे अरुणिमा के मन में एक बात और थी, भले ही आस्तिक उसके साथ इस समय नॉर्मल बिहेव कर रहा है, लेकिन उनके रिश्ते में अभी भी प्यार जैसा कुछ नहीं है, और इस प्रेमहीन शादी में वो किसी बच्चे को शामिल नहीं करना चाहती थी। अगर ऐसा हुआ तो उन दोनों की ज़िंदगी और ज़्यादा कठिन हो जाएगी। अरुणिमा वापस अपनी जगह जाकर लेट जाती है और आस्तिक के उस सोए हुए मासूम से चेहरे को देखकर सोचने लगती है कि क्या उनकी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी। हालांकि अरुणिमा अब फर्श पर नहीं सोई थी और ना ही अब उसे ज़मीन पर बैठकर खाना खाना होता था। वो हर वो काम करती थी जो इस घर में बाकी के लोग करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अरुणिमा के दिल में आस्तिक का जो डर है वो अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है। आस्तिक के लिए ना वो उसका काम करना बंद करती है और ना ही उसकी बात मानना, क्योंकि जब भी आस्तिक कुछ कहता है अरुणिमा सबसे पहले उस काम को करती है, इस डर से कि अगर आस्तिक को बुरा लग गया तो वो उसे फिर से सजा देगा, और अरुणिमा फिर से उस काले अतीत को नहीं जीना चाहती थी। इन सब बातों के बीच एक बात बहुत अच्छी हुई थी, अरुणिमा फिर से कॉलेज जाने लगी थी, लेकिन ये अलग बात है कि उसके साथ रॉयल गार्ड्स और कीर्ति हमेशा रहते थे। अरुणिमा अकेले कॉलेज नहीं जा सकती थी और ना ही कोई क्लासेस अकेले अटेंड कर सकती थी। पर इस एक महीने में ना तो अरुणिमा ने अपनी माँ से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की और ना ही शारदा जी ने अरुणिमा से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, और अरुणिमा के दिल में ये दर्द तो रहा, लेकिन फिर भी उसने सोच लिया था कि जब तक शारदा जी उससे बात नहीं करेगी वो शारदा जी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं करेगी। हालांकि आस्तिक अरुणिमा को मारता पीटता नहीं था, लेकिन फिर भी कोई काम अगर अरुणिमा गलत कर देती थी तो आस्तिक उसे डांटने के लिए ना तो जगह देखता था और ना ही माहौल, और ऐसे में अरुणिमा का सहारा बनती थी जानवी। इस एक महीने में अरुणिमा और जानवी के बीच इतना प्यार और इतना अपनापन आ गया कि जानवी को ये तक पता चल गया कि अरुणिमा के पास कितनी साड़ियाँ हैं। दोनों एक साथ खूब बातें करती और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताती थी। प्रणाली की शादी के कुछ दिनों बाद ही ताई जी अपने एनजीओ चली गई थी। जाने से पहले अरुणिमा से ये कहकर गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर उसे कभी भी जीवन में एक सच्चे साथी की ज़रूरत हो तो ताई जी हमेशा उसके लिए मौजूद रहेगी। सुबह का समय, सब ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। आस्तिक अपनी कुर्सी पर बैठकर आराम से नाश्ता कर रहा था। अरुणिमा और जानवी सबको नाश्ता परोस रही थी। तभी आस्तिक ने कहा, अरुणिमा जानवी बैठो, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। आस्तिक की बात सुनकर वो दोनों हैरान हो जाती हैं, लेकिन फिर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाती हैं। आस्तिक सबको देखता है और कहता है, अगले हफ्ते अरुणिमा का जन्मदिन है।
ये बात सुनकर सब हैरानी से अरुणिमा को देखने लगती हैं। यहाँ तक कि अरुणिमा खुद इस बात से बहुत बुरी तरह से चौंक गई थी। जब से वो इस घर में आई थी उसे तो याद भी नहीं था कि दिन कितने कट रहे थे। उसके लिए तो रोज सुबह से शाम होती और शाम से अगला दिन हो जाता। ऐसे में उसे तीज त्योहार, खुशियों और अपना जन्मदिन कुछ भी याद नहीं रहा। सब लोग आस्तिक को देख रहे थे और आस्तिक अरुणिमा को देखकर कहता है, और मैंने अरुणिमा का जन्मदिन की खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है।